ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए लाभकारी बताया। मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। AIM 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है। श्री वैष्णव ने कहा कि AIM 2.0 को इनपुट बढ़ाकर और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके भारत के नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इसके तहत मजबूत साइबर सुरक्षा के उपाय होंगे। CCEA ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 7927 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 160 किलोमीटर लंबी मनमाट से जलगांव के लिए चौथी लाइन, 131 किलोमीटर लंबी भूसावल से खंडवा के लिए तीसरी और चौथी लाइन तथा 84 किलोमीटर की प्रयागराज से मानिकपुर के लिए तीसरी लाइन शामिल है। नई लाइनों के बनने से व्यस्त मार्गों पर परिचालन आसान बन जाएगा। CCEA ने अरुणाचल प्रदेश के श्री योमी जिले में हियो जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 1939 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 240 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन समितियों को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके कारण भारत सहकारी क्षेत्र में एक विश्वमित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इस कार्यक्रम में शामिल भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबके ने भी कहा कि सहकारी समितियों ने इन वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक विशेष कारोबारी समूह पर रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की बैठक कल होगी। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में आज से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उपचुनाव के दौरान सुरक्षित, भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सेना को तैनात करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने 41 सीटों पर उपचुनाव के लिए 1 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। तुर्की अधिकारियों ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान 1298 अप्रवासियों के और 43 तस्करों को हिरासत में लिया है। एक बयान में कल तुर्की के आंतरिक मंत्री ने कहा कि पकड़े गए अप्रवासियों के लिए निर्वासन प्रक्रिया चल रही है। पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह विदेशी जमीन पर भारत की रनों के आधार पर सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।